मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैंने चेतना पर चढ़ने वाली चर्बी से आप सबको अवगत कराया था और चेतावनी भी दी थी, साथ ही साथ सतर्क भी किया था। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यह वाक्य आप सबने बहुत पसंद किया, और केवल पसंद ही नहीं किया बल्कि मुझे ईमेल के जरिए बताया भी। तो मुझे लगा कि इससे जुड़ी एक दो घटनाएं जो मेरे जहन में हैं वो आप सब के सामने रखूं, ताकि आपको एक उदाहरण के रूप में घटना मिल सके। क्योंकि जब हम किसी भी बात को उदाहरण के संदर्भ में देख लेते हैं तो हमारी चेतना के बहुत ही गहरे वो बात समा जाती है, यदा कदा फिर वो बात याद भी आती रहती है। और अगर कोई बात याद आती रही तो डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंगली चलने की, कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। दो दिनों पहले यहाँ के दैनिक भास्कर अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी, और सच पूछिए तो इस खबर से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो उठा। खबर यह थी कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, 15 दिनों तक पितृपक्ष चलेंगे। इसमें जो हमारे पितृ होते हैं हम उनकी शांति के लिए ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, और जो भी विधि विधान होते हैं वे सब करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। ये पितृपक्ष के बारे में है। तो जो खबर छपी थी वो इस बात को लेकर के थी कि 3 IAS ऑफिसर, जिसमें एक का नाम था राजीव शर्मा लेकिन बाकी 2 ने अपने नाम देने से इनकार कर दिए थे, 3 IAS ऑफिसर्स ने ये फैसला किया है कि इस पितृपक्ष के दौरान ये फैसला किया गया है। और फैसला ये है कि किसी ने अपने पिता के नाम पर, उनके पिता नहीं रहे होंगे, किसी ने अपने दादा के नाम पर बच्चों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की कि हर महीने वे एक निश्चित राशि स्कॉलरशिप के रूप में इन बच्चों को देंगे, और डेफिनेटली वो जो बच्चे होंगे वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर बच्चे ही होंगे। अब आप देखें कि वो पितृपक्ष में जो हम करते हैं विधि विधान, उसके बारे में किस प्रकार से बिल्कुल एक नए कोण से सोच रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि धार्मिक कसौटियों पर जब उनके इस निर्णय को कसा जाएगा तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, लेकिन सच पूछे तो मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। और फिर मन ही मन मैंने ये देखा कि हाँ, उन्होंने अपनी चेतना पर चर्बी नहीं चढ़ने दी है, वो किसी भी स्थिति को नए संदर्भ में देखने की क्षमता रखते हैं। एक दूसरी घटना मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, और हो सकता है कि इससे पहले, बहुत पहले कभी मैंने इसकी चर्चा भी की हो। जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो मेरे प्राइवेट असिस्टेंट हुआ करते थे, प्राइवेट जो मुझे मदद करते थे काम में, जिन्हें पीए कहा जाता है, सतबीर सिंह, वो हरियाणा के रहने वाले थे और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति, उनके जैसा कर्मठ अनुशासित व्यक्ति बहुत कम देखने को मिले, और उनके पैरेलल तो मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं। दोस्तों, उनके पिता नहीं रहे, जब पिता नहीं रहे तो ठीक है, जो भी किए जाते हैं उन्होंने किए, और इसके बाद फिर गांव को भोज कराया जाता है। तो गांव को भोज कराने के लिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 96 के आसपास की बात होगी, 1996, आज से आप 25 साल पीछे चले जाइए, उन्होंने 40,000 रुपए के लिए अप्लाई किया, यानी कि जो भी GPF में पैसा जमा होता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर आप वो अपना जमा पैसा निकलवा सकते हैं, तो उन्होंने 40,000 रुपए के लिए अप्लाई किया, और उसमें कारण भी लिखना होता है, और कारण उन्होंने ये लिखा कि पिता के निधन पर भोज कराना है, मृत्यु भोज गांव वालों को कराना है। वो फाइल मेरे पास आई, चूंकि वो मेरे पीए थे और मैं जानता था कि ये व्यक्ति मेरी बातों को समझ सकते हैं, तो मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि देखो, ये जो आपने अप्लाई किया है, ये पैसा तो मैं सैंक्शन कर दूंगा, लेकिन मेरी एक राय है। उनका कि क्या राय है सर? मैं कहा मेरी राय ये है कि आप ये देखिए कि आपके गांव में किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आप इस 40,000 रुपए का इस्तेमाल उसके लिए कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर, हमारे गांव में पानी के पीने की बहुत ज्यादा समस्या है और पशुओं को तो बिल्कुल पानी मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ये 40,000 रुपए आप इस काम के लिए लगाइए, हैंडपंप की जरूरत हो तो हैंडपंप खुदवा दीजिए, या जो भी व्यवस्था हो सकती है पानी की आप वो कीजिए। उन्होंने फिर एक बात कही कि सर, गांव में इसका बहुत जबरदस्त रूप से विरोध होगा, आप हरियाणा में जानते हैं कि इस वहां जो ग्रुप, जो हाफ पंचायत या कह लीजिए जो कम्युनिटी फीलिंग है, वो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि देखो, एक बात तो अभी तुम्हारे पक्ष में है, इसका इस्तेमाल करो, और पक्ष में यह है कि तुम अभी राष्ट्रपति भवन में काम कर रहे हो, तो उन लोगों के दिमाग में है कि तुम राष्ट्रपति भवन में हो, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारी बात का बहुत ज्यादा विरोध करेंगे, तुम्हारे इस निर्णय का बहुत ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत बातें होंगी, लोग उठाएंगे, लेकिन तुम चाहो तो उन्हें संतुष्ट कर सकते हो कुछ तर्कों के द्वारा। और मैंने कहा कि सबसे जो मजबूत तर्क होगा वो ये होगा कि देखिए, मैं अगर भोज कराता तो एक दिन आप सब आते, भोज करके चले जाते और मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल जाती। लेकिन यहां चूंकि मैं पानी की व्यवस्था कर रहा हूं तो रोज गांव के लोग ये पानी पिएंगे, यहां के पशु पानी पिएंगे, तो जब जब लोग तृप्त होंगे इस पानी को पीकर, तब तक मेरे जो पिता हैं उनकी आत्मा तृप्त होगी। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, खुशी की बात है, मैं इसमें उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था, उन्होंने मेरी बात मानी और ये काम किया। और इसके बाद कुछ एक डेढ़ दो साल पहले जब मैं दिल्ली गया था तब उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया कि सर, अब तो हमारे यहाँ लगभग इस तरह की परंपरा ही चल गई है कि जब किसी का निधन होता है तो उसके नाम से कुछ न कुछ इस तरह का, जिसकी जो हैसियत होती है उस तरीके से कुछ काम गाँव में करा दिया जाता है। ये है चेतना। दोस्तों, इसे मैं कहता हूं चर्बी रहित चेतना। और आप देखिए कि किस तरीके से विद्या हमें विमुक्त करती है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। आप सब इन सब पर बातों पर विचार करें, अपने आसपास की स्थितियों को देखें और लगातार अपनी चेतना पर, चर्बी जो चढ़ रही है उसके प्रति सतर्क रहें। और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।